प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी आज द प्रिंट के राजनीतिक संपादक डीके सिंह का लेख पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें वे लिखते हैं कि क्या है प्रशांत किशोर का 4M प्लान, कांग्रेस को क्यों पार्टी में एक जेपी नड्डा की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान का जिक्र होते ही जिन चिर आशावादियों की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है, उनके लिए शायद ईस्टर वाला रविवार समय से कुछ पहले आ गया था। इसके एक दिन पहले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जान फूंकने के कार्यक्रम का खाका 10 जनपद में प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की किसी कमेटी की रिपोर्ट आखिरी बार कब सबके सामने आई और उसकी कितनी सिफारिशों को लागू किया गया। सोनिया गांधी ने पार्टी के सामने भावी चुनौतियों का आकलन करने के लिए 2007 में 13 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसके एक सदस्य राहुल गांधी भी थे। उस कमेटी के कई सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरप्पा मोइली, मुकुल शर्मा, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान और संदीप दीक्षित आज गांधी कुनबे के लिए वर्तमान चुनौतियों में तब्दील हो गए हैं। सिंधिया भाजपा में चले गए हैं। दूसरे अख्यात G21 मूलतः G23 के हिस्से हैं। AK एंटनी से पूछ लीजिए कि उन्होंने कितनी कमेटियों की अध्यक्षता की है और उनकी रिपोर्टों का अब तक क्या हुआ है। प्रशांत किशोर ने जो खाका पेश किया है, इसके अध्ययन के लिए जो ताज़ा कमेटी बन रही है, उसका शायद वह हश्र ना हो। पीके अपने प्रस्तावों पर गांधी परिवार से करीब 2 साल से विचार विमर्श कर रहे हैं और दोनों पक्ष 90% मसलों पर एकमत है। शेष 10% मसलों पर उनकी बातचीत पिछले साल सितंबर में टूट गई थी। अगर गांधी परिवार ने उन्हें पिछले शनिवार को फिर से बुलाया है तो जाहिर है कि उनके मतभेद कम हो रहे हैं। गांधी परिवार पीके को साथ लेने के लिए बहुत उत्सुक है। कांग्रेस बिखर रही है। गांधी परिवार और पार्टी के साथियों के बीच अविश्वास की खाई गहरी होती जा रही है। पीके चाहे जिस भी हैसियत से कांग्रेस से जुड़ेंगे, उससे यही होगा कि गांधी परिवार पर दबाव घटेगा। ऐसी उम्मीद वे कर सकते हैं जिन्हें कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं नजर आता। वे जादुई चुनाव रणनीतिकार के रूप में पीके की ख्याति के कारण पुनर्विचार कर सकते हैं और अपने कदम रोक सकते हैं। आखिर कांग्रेस के लिए पीके ने क्या रणनीति बनाई है, इसके लिए आपको उनके द्वारा तैयार किया गया खाका देखने की जरूरत नहीं है। जैसा कि दिग्गज पत्रकार अरुण शौरी कहते हैं कि गुप्त दस्तावेज की तलाश में हम उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड को पढ़ते तक नहीं है। पिछले 3 महीने में पीके ने कई इंटरव्यू में काफी संकेत दिए हैं कि भाजपा को हराने और कांग्रेस में जान फूंकने की उनकी योजना में क्या कुछ शामिल है। उन्होंने अपनी रणनीति की मोटी मोटी रूपरेखा पेश की है, बेशक उसे क्रियान्वित करने के ब्यौरे नहीं बताए। मूल रूप से पीके के पास 4M वाला फॉर्मूला है, मैसेज, मैसेंजर, मशीनरी और मैकेनिक्स, यानी संदेश, संदेशवाहक, पार्टी तंत्र और प्रक्रिया। 2024 में कांग्रेस का बड़ा संदेश क्या होगा? विपक्ष को पहले यह विचार करना होगा कि क्या है जो भाजपा को कामयाबी दिलाती है। पीके का कहना है कि मूलतः ये 3 चीजें हैं, हिंदुत्व, उग्र राष्ट्रवाद, जन कल्याणवाद। तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए? पीके इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं देते, सार्वजनिक तौर पर तो नहीं ही, लेकिन वे इनकी सीमाओं को पहचानते हैं। उनका कहना है कि उदाहरण के लिए चुनावी आंकड़ों को देखें, उनसे जाहिर होता है कि 2 में से 1 हिंदू ने भाजपा को वोट दिया। द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता के ऑफ द कफ कार्यक्रम में हाल ही में दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि हिंदुत्व की सीमाएं हैं, इसके बूते आप 50-55% हिंदुओं को अपने साथ तो ला सकते हैं, लेकिन हिंदुओं में उदार खुले विचार वालों की संख्या भी काफी है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर बहस में उलझना बेमानी है। जहां तक उग्र राष्ट्रवाद की बात है, पीके को यह बात अकल्पनीय लगती है कि जिस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, उसे आज भाजपा द्वारा विपक्ष पर लगाए गए इस आरोप का जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है कि वह राष्ट्र विरोधी है। हैरत और बेचैनी से भरकर वे कई सवाल उठाते हैं। कांग्रेस सरकार सरदार पटेल सरीखी विभूति पर भाजपा को कब्जा करने की छूट कैसे दे सकती है? कितने कांग्रेसी हैं जो जवाहरलाल नेहरू के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिवा वास्तव में लड़ाई लड़ रहे हैं? इसलिए पीके जब इस विपक्षी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तब उम्मीद कीजिए कि वह फिर से राष्ट्रवादी कहलाने और अपने दिग्गजों को अपने कब्जे में लेने की कोई पहल करेंगे। जहां तक भाजपा के जनकल्याणवाद की बात है, विपक्ष के पास लोगों के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव होना चाहिए कि अगर वह सत्ता में आया तब क्या बेहतर पेशकश करेगा। वह विकल्प विश्वसनीय और कायल करने वाला होना चाहिए। वे विपक्ष की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई के व्यापक स्वरूप हो सकते हैं जिन पर प्रशांत किशोर विचार करते रहे हैं। कामयाबी के उपरोक्त मंत्र में संदेश वाहक वाला मंत्र कांग्रेस के मामले में सबसे जटिल और पेचीदा है। अपने तमाम इंटरव्यू में पीके जेपी नड्डा मॉडल के असर की चर्चा करते रहे हैं। भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने नड्डा को पार्टी अध्यक्ष बनाया। यह भाजपा को अपनी यह कहानी सुनाने में मदद करती है कि वह हरेक को शीर्ष पर पहुंचने का मौका देने वाली पार्टी है। मोजो स्टोरीज की बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा में मोदी और शाह संगठन को चलाते हैं, लेकिन नड्डा अध्यक्ष हैं। भाजपा कैसे काम करती है? वह कहती है कि उसका बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है। ऐसा वास्तव में होता है या नहीं, यह अलग बात है। वह जनता में यह संदेश तो देती ही है। प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के काम अलग अलग हैं और उनके लिए अलग अलग काबिलियत चाहिए, इसलिए संगठन चलाने वाले को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। जिसका मुख्य काम जनता से अपने तार जोड़ना है, उसे लोगों को यह बताना है कि उनके बारे में उसके क्या क्या सपने हैं और इस तरह उनका दिल जीतना है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह एक समस्या है। मनमोहन सिंह कोई मोदी नहीं थे, लेकिन सोनिया सिंह मॉडल की वापसी मुमकिन नहीं दिखती है। हालांकि पीके मानते हैं कि सोनिया अभी भी पार्टी को चलाने की क्षमता रखती हैं और वे ये भी मानते हैं कि राहुल अगर कमान संभालते हैं तो भी कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इससे नड्डा मॉडल के बारे में उनके विचार बदल नहीं जाते। शेखर गुप्ता को दिए उपरोक्त इंटरव्यू में पीके ने कहा कि अगर आप परिवार वाली पार्टी चलाते हैं तो आप लंबे समय तक राजनीतिक ताकत नहीं बने रह सकते। 75 की हो चुकी सोनिया गांधी का फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने का कोई सवाल ही नहीं है। वैसे कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर राहुल अपनी आजमाई हुई क्षमता या पद के लिए अपनी अक्षमता के बावजूद वापस आते हैं तो प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। यह विचार गांधी परिवार को कितना भाएगा? अगर गांधी परिवार सितंबर में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में अपनी दावेदारी छोड़कर किसी नड्डा को आगे बढ़ाता है तो यह G21 को शांत करेगा और पार्टी पर से परिवारवादी का ठप्पा मिटाने में भी मदद मिलेगी। लेकिन गांधी परिवार को जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसके मद्देनजर ये आसमान से तारे तोड़ लेने वाली बात हो सकती है। प्रशांत किशोर कांग्रेस को नीचे से पुनर्गठित करने की योजना के लिए जाने जाते हैं, बूथ से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर की कमेटियां बनाने की योजना के लिए। जब वे पार्टी में ऊपर से ही जवाबदेही तय करना शुरू करेंगे तब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर अक्सर कहा करते हैं कि कांग्रेस अपनी नाकामियों के लिए जनता के साथ संवाद बना पाने में अपनी कमजोरी को जिम्मेदार ठहराती है। वे उलझन में है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला 7 वर्षों से पार्टी के संचार विभाग के मुखिया कैसे बने हुए हैं। अगर प्रशांत किशोर राहुल के करीबियों के पिछले रिकॉर्ड देखने लगे और जवाबदेही की मांग करने लगे तो पाएंगे कि कांग्रेस नेता का 12 तुगलक लेन वाला आवास खाली हो चुका है। वर्तमान राजनीति और पार्टियों की मजबूतियों तथा कमजोरियों के आकलन के बारे में प्रशांत किशोर सार्वजनिक तौर पर एक विचार रखने और करीबी मंडली दूसरा विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। जो भी हो, सवाल यह है कि वह पार्टी में जो गहरा मंथन चाहते हैं उसके लिए क्या गांधी परिवार तैयार है। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को बदल डालते हैं या उसका उल्टा होगा। इस सवाल का जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है। द प्रिंट पॉड सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।